ہم دیکھ رہے ہیں کہ عموماً پارے نئی سورت سے شروع ہو رہے ہیں اور پارے کے اینڈ پہ بھی پھر سورت بھی ختم ہوتی ہے. اور یہ قرآن پاک کی وہ خوبصورتی ہیں جب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تبھی ہمیں دکھتی ہیں, ورنہ عام طور پہ تو پڑھنے میں اتنا اس کا پتہ نہیں چلتا. تو دیکھتے ہیں, بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اس حصے میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا حق ہم ادا کر سکے. تو تفسیر دیکھیں گے آیت 114 سے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال اور طیب. پھر کھانے کے بعد کیا کرو؟ وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پیچھے سے بات ہو رہی تھی توحید کی, اللہ کے لیے خالص ہونے کی. اللہ کے راستے میں جو مشکلات آ جائیں, جو پریشانیاں آ جائیں, اس کے بعد اس پہ جم جانے کی. اب یہاں سے کچھ حلال اور حرام کے احکامات کی بات ہے. مدنی صورتوں میں عموماً حلال اور حرام کے احکامات آتے ہیں, لیکن سورت نحل جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں کچھ اشارے اس طرح کے ملے کہ جس کے ساتھ پھر اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ آگے جا کے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اندر حرمت آنے والی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر دور میں ہی حرام رہیں. تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کا اختتام بھی شروع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ سچا اسلام جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے. کیا واقعی صرف نماز روزہ عبادت ہی کا نام ہے, یا پھر کھانے پینے زندگی گزارنے کے طریقوں سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ تو فرمایا فاکلو, کھاؤ, حکم ہے نا. تو کھانا بذات خود ایک عبادت ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور آیت کا یہ حصہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1000 حکم ہیں, یہ حکم والی آیتیں, تو یہ آیتیں بھی اسی میں آتی ہیں نا کہ کھاؤ. تو کھاؤ حکم ہے. تو جس طرح عبادت اللہ کے حکم سے کی جاتی ہے نا, تو طریقہ بھی اللہ کے حکم سے پوچھا جاتا ہے. کب پڑھنی ہے, کتنی پڑھنی ہے, فجر کیسی ہوگی, ظہر کیسی ہوگی, اسی طرح کلو کا حکم چونکہ اللہ کا ہے, تو پھر کھانے پینے میں کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, یہ بھی اللہ ہی بتائے گا. جس طرح عبادت میں کمی بیشی کر لینے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے ثواب لینے کی بجائے, اسی طرح کھانے کا حکم عبادت سمجھ کے کرنا, لیکن کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں نہ پوچھنا جو کہ اس کا حکم ہے, تو گویا کہ یہ ہمارے کھانے پینے کو بھی پھر عبادت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیز بن جاتی ہے. کھانے سے نہیں روکا, کھاؤ, لیکن دو شرائط لگا دی. نمبر ایک, حلالن, حلال ہو, حل یا حلو سے حلال ہو, یعنی جائز ہو تمہارے لیے. اس کی کئی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں اور طیب بھی ہو. حلال دو طرح سے حلال ہوتا ہے. نمبر ایک, حلال فی ذاتی ہی, یعنی کھانا اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہو. مثلا اس میں کوئی حرام انگریڈینٹس نہ ہو, کوئی اس کے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پڑی ہو. دوسرا ہوتا ہے حرام بی سبب ہی. مثلا سیب ہے, حلال ہے, لیکن کس سورس آف منی سے آپ نے لیا, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ اس سیب کو کھائیں گے کہ نہیں. دوسرا ہے طیب. طیب کیا ہے؟ کہ پاکیزہ بھی ہو. کس طرح سے؟ یعنی مثال ہے کہ گلا سڑا نہ ہو, باسی کھانا نہ کھاؤ. اور اس پہ پیچھے سورت بقرہ میں بات ہوئی اور وہ متنی سورت تھی. یہاں آپ امیجن کریں کہ مکی ماحول میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں. جس طرح کفر اور شرک میں انسان اللہ تعالیٰ کے حق نہیں دیتا نا, اسی طرح اپنے بھی نہیں دے پاتا. تو مکہ والے بھی کھانے پینے میں بہت کمی بیشیوں کا شکار تھے. آج کے دور میں بھی آپ سنیں گے فلاں مینڈک کھاتے ہیں, فلاں قوم سانپ کھاتی ہے, فلاں جو ہے دس اینڈ دیٹ کھاتا ہے. اور جو قباحت اور گندی چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, پتہ نہیں ای میل صحیح تھی کہ غلط تھی, کہ ایک شخص چھوٹے سے بچے کو فرائی کر کے کھا رہا ہے. ماں کے پیٹ کے جو فیٹس جو جزایا ہو جاتے ہیں بچے, اس کو دنیا کا ایک ملک میں لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. اس کی ہڈیاں چباتے ہوئے دکھایا گیا, چھوٹا سا بچہ معصوم سا, اور اس کو جلا جلا کے باربیکیو بنا کے کھا رہے ہیں. یاد رکھیے, جو بندہ اللہ کا نہیں ہوتا وہ اپنا بھی نہیں ہوتا. جس دل میں ایک اللہ کی محبت نہیں رہتی نا, پھر زبان حرام کھانوں کی آتی ہوتی ہے, لذت آتی ہے. آپ کو شراب کا سوچ کے گھن آئے گی, لوگ چسکیاں لے کے پیتے ہیں. کیا وجہ؟ کیونکہ دل حلال نہیں رہا, دل میں طیب نہیں رہا,
कलमा तैयबा दिल में नहीं आया तो जुबान भी गंदी, आंखें भी गंदी, सब चीजें गंदी। तो गंदगियों से बचाने की चीज क्या है कि इंसान एक रब का बन जाए। तो खाओ पियो, देखो ठीक है, मक्खियों वाला तो नहीं, बासी तो नहीं, छालियों के नाम पे छालियां खा खा के अपनी जुबान को ना जलाओ। यानी जो भी इंसान खाए उसका फर्ज बनता है कि क्या ये हलाल और तैयब है। सिर्फ अपने खाने और पीने के जो ड्रिंक्स है उन्हीं को जमा करके आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है जो हम खाते हैं क्या वाकई वो तैयब भी होता है कि नहीं। यहाँ फिर वही बात जहन में आ गई कि कोक जिसको बड़े शौक से लोग आज के दौर में पीते हैं, उसकी बाकी सारी कबाखतें तो अलग कर देना, कहाँ से है, किसकी कंपनी है, किसको पैसे जाते हैं। अगर सिर्फ उसकी केमिकल एनालिसिस देख लें तो जितना भी कार्बोनेटेड वाटर हम पीते हैं सोडा की शक्ल में या ब्रूस आप लोग खालिबन जहाँ कहते हैं उसको, कार्बन लेके जाते हैं अंदर। जो दिन में पूरा वक्त लंग्स को काम करना पड़ता है ना, ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन छोड़ता है, हम वही कार्बन ले रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही जैसे आप कोयला जहाँ जलाएं और जो स्मोक है उसको अंदर इनहेल करें, दम भी घुटता है, सांस भी घुटता है। तो ये जो कार्बोनेटेड वाटर हम पीते हैं ये कार्बन लेते हैं। किसी का दांत टूटा और उन्होंने कोक के ग्लास में डिप कर दिया, 7 डेज के अंदर पूरा दांत घुल गया। आप इसे ड्रेन खोलें, आप अपने टॉयलेट के जो अगर ड्रेन बंद हो जाए कभी तो एक कैन कोक का डाल के उसको ऊपर से बंद कर दें, 15-20 मिनट में वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके अंदर एसिड होते हैं, लेकिन हम खा रहे हैं, हलाल है के तैयब है नहीं पता। ठीक है आपको हराम में तो किसी को नहीं कह सकती, ना मुझे ज़रूरत है, लेकिन कोई भी चीज़ जब जिस्म में जाए एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचा करें कि ये मेरे अंदर जाएगी, अंदर क्या तबाही मचाएगी। इसी तरह हमारे पास खाने बहुत ही तकलीफ़ देह होते हैं, इतना स्पाइसी, एक तो ना हमारा टेस्ट बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेस्ट है, ज़ुबान को भी आदत होगी, स्टमक हुई, लेकिन बाज़ दफ़ा तो इतना स्पाइसी खाना खाते हैं लोग के वो ज़ुबान पे रखे तो ऐसे लगता है कि आग लग गई, और कहते हैं बहुत मज़ा आता है। हमारी साइंस की टीचर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे अक्सर ही याद रहती है जब कभी मैं बहुत किसी के घर स्पाइसी खाना देखूं। वो कहती है कि सोचो देखो तुम मिर्चों वाला खाना ज़ुबान पर रखते हो, ज़ुबान कितनी सख्त चीज़ है, देखने में हाथ में भी आती है, लेकिन सोचो यही खाना जब मैदे के अंदर जाएगा, छोटी छोटी नालियाँ, ट्यूब्स, और वहाँ क्या क्या कुछ होता है, तो वहाँ कितनी तबाही होती होगी। और बाकी ये सोचें तो स्टमक पहले ही जलने लगता है। तो खाने में अच्छा खाना, फ्रेश खाना, हलाल खाना, ये इंसान से अच्छे काम कराता है। बहुत सारी चीज़ें जो आज हम नेकी की नहीं कर पाते ना, उसकी वजह हमारा फूड है, हैवी फूड, सैचुरेटेड फूड, बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रोल का फूड खा लेना, फिर नींद आएगी, सुस्ती आएगी। तो बहरहाल इसके ऊपर हम पीछे बात काफ़ी कर चुके इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोबारा एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि सादा खाएं, आसान खाएं। और करें क्या, वश्कुरू नेमतल्लाही इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। खूब अच्छा भी खा लें, साफ खाएं, कोई इसका ये नहीं मतलब कि अच्छा खाना नहीं खा सकते, फ्रेश खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी फूड खाइए, एनर्जेटिक फूड खाइए, बहुत फैटनिंग ना खाएं। करना क्या है, अल्लाह का शुक्र, और ये शुक्र कौन सा है, शुक्र बिल जवारेह, कि जिस खाने से ताकत मिली उसको अल्लाह की मर्जी में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि खा पी के फिर आँखों से ना शुक्रिया करवाएं गलत चीज़ें दिखाकर, कानों से ना शुक्री करवाएं गलत सुनवाकर, और ज़ुबान से ना शुक्री करवाएं गलत बोलकर। अगर वाकई फिर तुम उसी को पूछते हो कौन सी इबादत है भैया, कोई जायनमाज की बात हुई। इससे क्या पता चला कि खाना खाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना बजाते खुद एक इबादत है। एक रिवायत का खुलासा है कि खाना खाकर शुक्र करने वाला रोज़ा रखकर सब्र करने वाले के बराबर है। इस नज़रिए ने फिर रहमानियत का भी रद्द कर दिया। और बाज़ लोग जो दीन के नाम पे सब कुछ ही छोड़ देते हैं ना खाना, ये उसका भी रद्द है। इस्लाम को कोई मरियल लोग नहीं पसंद कि ज़रूरत का भी ना खाए और अपने जिस्म की एनर्जी भी पूरी ना करे और फिर बस लेटा रहे बैठा रहे। ज़ाहरी बात है कि गाड़ी में गैस डलती है, पेट्रोल डलता है, तभी चलती है ना। हम ज़्यादा सही खाना खाते हैं एनर्जेटिक, तो ज़्यादा भाग भाग के काम करते हैं, और जो थोड़ा खाएंगे जान भी कम होगी, फिर जल्दी बीमारियाँ भी आएंगी। तो मुनासिब खाएं, ज़्यादा खाएं, थोड़ा खाएं, ये बहस नहीं है, मुनासिब खाएं। पहले खाने की बात की, फिर बताया इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, तरतीब देखिए, पहले हलाल बताया फिर हराम। असल में ना यहाँ से लेके आखिरी बल्कि 125 नंबर की जो आयत हम करेंगे, सूरत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयत, तबलीग के नुक्ते, उसको यहीं से छांटना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला ने हमें पहले खाने का बताया, फिर ना खाओ या क्या हराम है। अमूमन हम तबलीग शुरू करते हैं ना तो पहले ये भी हराम, ये भी हराम, ये भी गलत, ये भी गलत, ये करते हैं। पहले कहा खाओ, खूब खाओ। इससे क्या पता चलता है कि जब भी किसी को दीन की कोई बात बताई जाए तो उसको जहन साजी की जाए, उसको अच्छे तरीके से उसका तैयार कर दिया जाए, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़े तो दूसरी चीज़ों को भी बताया जाए। तो आयत नंबर 115 में हराम चीज़ों की लिस्ट दोहरा दी गई। पीछे 3 दफ़ा ये बात गुजर चुकी, 4थी दफ़ा यहाँ पे आई है और ये आखिरी बार है। 4 दफ़ा ये आयत कुरान पाक में आई है, सूरत अलानाम में भी आ चुकी है, तो बहरहाल यहाँ भी आखिरी बार आ रही है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, अल्लाह ने तो हराम कर दिया तुम पर मुर्दार, और वद्दमा और खून। कौन सा खून? सूरत अलानाम में हम पढ़ चुके हैं, दमम मसफूहा, बहता हुआ खून, रगों में जो दौड़ रहा होता है। तीसरी चीज़ वलहम अलखिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। और चौथी चीज़ वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो जिस पर बुलंद किया गया हो गैर अल्लाह का नाम, यानी ज़िबा के वक्त जिसके ऊपर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो, लेकिन फिर भी रुख्सत है। फमनित्तुर गैर बाग़िम वला आद, और जो कोई बेबस कर दिया जाए, मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए इस काम के करने के लिए, शर्त दो हैं। नंबर एक, बाग वह लज्जत का चाहने वाला ना हो, वला आद और आदि ना हो, हद से गुजरने वाला ना हो, तो फ़ाइनल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ आप देखिए कि पूरी शरीयत के अंदर यही 4 चीज़ें हराम हैं। नंबर एक, मैता, मुर्दार, खुद से मरा हुआ जानवर। कौन सा है? हम सूरत मायदा की इब्तदाई आयतों में पढ़ चुके हैं, अलमुनखन कबल मौकूज़ अवल मुतरद्दी अवल नतीहत वमा अकल सबू। 5 किस्में थी मुर्दार की, वो जानवर जो खुद मर जाए और जिसके ज़िबा के वक्त खून उसका ना निकाला जाए। दूसरी चीज़ है दम, खून। कौन सा खून? जो बहता है रगों में, क्योंकि जिस खून के अंदर बीमारियाँ होती हैं, गंदगियाँ होती हैं, और जिस्म की बीमारियाँ जो हैं वो मुंतकिल हो जाती हैं, लेकिन वो खून जो गोश्त के साथ लग चुका होता है उसकी इजाज़त है। इसी तरह हदीस में आता है कि 2 मुर्दार और 2 खून भी जायज़ हैं। मुर्दार में एक टिड्डी और मछली, और दूसरा जो खून के अंदर खलेची और तिली, वो तो बना ही पूरे का पूरा खून का होता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह साइंस ने इसको वेरीफाई कर दिया कि वो साफ खून होता है। जिगर ही तो वो प्लांट है जहाँ हमारे जिस्म का सारा खून जो है वो फिल्टर हो जाता है। तो अल्लाह ने देखे जहाँ गंदगी थी, जहाँ हमारा नुकसान था, वो ना खाओ, जहाँ जिगर में खून था खा लो। इससे हिकमत भी समझ आती है ना, कि एक लाठी से नहीं हाँक दिया अल्लाह ने कि ये खाओ ये ना खाओ, कि रोप डालने का शौक नहीं है। जो हमारे लिए ठीक था उसको रखा, जो नहीं ठीक था उसको छोड़ दिया। फिर तीसरी चीज़ जहाँ आई, वलहम अलखिंजीर, खिंजीर का गोश्त। यहाँ तो लहम बोला गया, लेकिन मुराद इससे पूरे के पूरा खंजीर है, उसकी हड्डियों से बनी हुई चीज़ें, उसकी चमड़े से बने हुए जूते, पर्स, चाहे कितने कीमती हों, जितने खूबसूरत हों, और जितने ब्रांडेड किस्म के पर्स और जूते होते हैं ना, उसमें मेजॉरिटी इस तरह के जानवरों की होती है जो कीमती होते हैं, कम मिलते हैं ना, नायाब होते हैं। इसलिए कभी भी आप कोई जूता, पर्स खरीदें, कोई बैग, कोई जैकेट खरीदें, तो अंदर से मुड़ा हुई जगह से पढ़ के देखें कि ये किस चीज़ का लेदर था, लेकिन बहरहाल उसको भी नहीं ले सकते हम। और खिंजीर क्यों गंदा है, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके बहुत, कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी अखलाकी बुराइयाँ भी हैं, और जिस्मानी तौर पर इंसान से इसका बहुत ज़्यादा मिलता है। कोई भी बीमारी इसमें होती है तो वो दूसरों में भी आ जाती है। आते इसकी इतनी गंदी हैं कि होमोसेक्सुअल भी है, इसी तरह से गंदगी खाता है, और जो इंसान खाता है उसी तरह की आदत उसके अंदर आने लगती हैं। 4थी चीज़ है वह माहिल गैरल्लाह भी, और जिस पर बुलंद किया गया हो गैर अल्लाह का नाम। ये आयत जो है ये हमेशा ही लोगों के लिए मुख्तलिफ ही रही। हम कहते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं वो इस आयत की क्या तफसीर करेंगे, कि हर वो चीज़ जिसको अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम पर मुसल्लत किया जाए। तो हम यहाँ मुख्तलिफ की के सूरतें देखेंगे कि किसी जानवर को गैर अल्लाह के लिए नामजद करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली सूरत इसकी क्या होती है, कि गैर अल्लाह का तकर्रुब और उसकी खुशनूदी के लिए इसे ज़िबा किया जाए। आसान लफ्ज़ों में आप कहें कि अल्लाह के सिवा किसी और का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, उसे खुश करने के लिए ज़िबा किया जाए, और ज़िबा करते वक्त नाम भी उसी बुत या बुज़ुर्ग का लिया जाए जिसको राज़ी करना है। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं कि किसी को खुश करने के लिए, मसलन आप देखिए कि फ़िक़्हे हनफ़ी की एक बड़ी मारूफ किताब है, दुर्रे मुख्तार उसका नाम है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी हाकिम या किसी बड़े की आमद पर, कोई बड़ा शख्स आता है ना किसी मुल्क का बादशाह, कोई फला कोई कोई फला, फरमाया उसकी आमद पर जानवर ज़िबा करना, उसको खुश करने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, ताज़ीम के लिए अगर कोई जानवर ज़िबा किया जाए तो वो जानवर भी हराम होगा और वमा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह में दाखिल होगा, चाहे उस पर अल्लाह का नाम ही लिया जाए। लेकिन लोगों ने इस आयत को बहुत मिस इंटरप्रेट किया। तो पहली सूरत आप अच्छी तरह समझ गए कि नाम चाहे अल्लाह का लिया जाए, क़ुर्ब हासिल करना है किसी बुज़ुर्ग का, किसी इमाम का, किसी बुज़ुर्ग का, किसी पीर के नाम का, फलां कब्र पे ले जाओ, फलां कब्र पे ले जाओ, ये है पहली सूरत। दूसरी सूरत क्या है कि मकसद तो है गैर अल्लाह का तकर्रुब, लेकिन ज़िबा करते वक्त नाम अल्लाह का ही लिया जाए। इस मसले पे बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं। जो भी दीनदार होने के दावे के बावजूद लोगों को कहते हैं नहीं आओ कब्रों पे बकरे चढ़ाओ, न्याजें दो, वो ये मसला लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं खुशी किसी की थी लेकिन नाम तो हम अल्लाह का ही लेते हैं ना। तो ये दूसरी सूरत होती है वबा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह में, कि क़ुर्ब किसी और का हासिल करना था लेकिन ज़िबा के वक्त नाम अल्लाह ताला का लिया जाता है। तो कब्रों पे जितने जानवर कटते हैं वो असल में इसी सूरत में कटते हैं कि खुश वो उस बुज़ुर्ग को ही रुख को करना चाहते हैं लेकिन नाम अल्लाह का लेते हैं। मसलन ये बकरा फलां पीर का है, ये गाय फलां पीर की गाय है, ये जानवर 11वीं के लिए अब्दुल कादर जिलानी के लिए है, अगर इस 11 तारीख को हमने दूध की खीर पकाकर ना बांटी तो हमारी भैंसें मरने लगेंगी, इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं तकर्रुब में आती है। और वो बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन कहते हैं कि हम इससे अपने इस बुज़ुर्ग को खुश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि दो सूरतें हमने देख ली ना, जो लोग कब्र परस्ती और इस तरह की चीज़ों को जायज़ करते हैं वो कहते हैं ये दूसरी हराम नहीं है, पहली हराम है जिसमें अल्लाह का नाम लिया गया लेकिन दूसरी जायज़ है, और उसकी वजह क्या है कि हमने नाम तो अल्लाह का लिया है ना। और इस मसले को इतना उलझा कर शिर्क के दरवाजे खोल दिए, हालांकि वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही में सभी को चाहते हैं। हम देखिए कि जो लफ्ज़ है ना उहिल्ला, इसका रूट देखे ज़रा क्या है, हल्ला युहिल्लु से ना, उर्दू में एक लफ्ज़ हम बोलते हैं हिलाल, किसको कहते हैं नए चांद को, हिलाल क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उसको देखते एकदम आवाज़ लगती है। तो अहल्ला का मानी होता है बुलंद करना आवाज़, शोर मचाना, किसी चीज़ को शोहरत देना। इस एक लफ्ज़ के ऊपर मुख्तलिफ तरह से बातें की गई हैं जिसके अंदर एक लूप होल लेके ये कह दिया गया कि हम नाम तो अल्लाह का लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ उहिल्ला का लफ्ज़ है, हलाल का लफ्ज़ तो नहीं है ना। आप अगर एक लफ्ज़ के मखरज कोई फ़र्क देख लें तो यहाँ आपको फ़र्क पता चलेगा, वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाह का लफ्ज़ है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा कि वमा उहिल्ला हासे, जिसको हम कहते हैं ना बकरा हलाल करना है, ज़िबा करना है, हलाल की बात नहीं, सिर्फ पुकारने को भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया। यानी जो चीज़ जहाँ इस बात की दलील थी कि अल्लाह के सिवा किसी के लिए पुकारा भी ना जाए, उसी को मिस इंटरप्रेट करके लोग इसी से यूज़ करते हैं। और कई कई सफ़ों की तफसीरें आपको मिलेंगी इस आयत की उन लोगों की किताबों में जो मानते हैं कि कब्रों पे बकरे छतरे जो हैं वो ज़िबा करने चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को हमें अपने जहन में क्लियर कर लेना चाहिए, किसी किस्म का भी ऐसा रास्ता जिससे हमारी खाने में तैयब और हलाल की बजाय हराम चीज़ चली जाए वो दुरुस्त नहीं होती, और इसमें शिर्क आ जाता है। शिर्क फिल अल्लाह ताला की यानी मोहब्बत में ये शिर्क आने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैंने नज़र मानी थी कि मैं बवाना जगह पर जाकर एक ऊँट ज़िबा करूँगा। आपने कहा तुमने क्यों कहा? कैसे, किसी मुश्किल में आया हुआ था तो मैंने कहा ये काम कर दूँगा। कहा क्यों, क्या वहाँ कोई ईद है जो लोग मनाते हैं? कहा नहीं। कोई दरख्त है जिसकी पूजा करते हैं? नहीं। कोई कुआं है? नहीं। कोई बुत रखा हुआ? कहा नहीं। कहा अच्छा ये सब कुछ नहीं है तो जाओ फिर वहाँ ज़िबा कर दो। आपने इतनी लंबी बात की, जो बकरा आप इधर ज़िबा कर सकते हैं आप क्यों अब्दुल कादर जिलानी के मज़ार पर लेके जाएं? सोचिए ज़रा, अल्लाह तो चारों तरफ है, देखता है, आप क्यों दाता हजवेरी के दरबार पर जाके बकरा देंगे तो ही आपका काम होगा। तो यहाँ से शिर्क का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह ताला ने मक्की सूरत में इसको लाकर बता दिया कि मक्का वालों का शिर किसी किस्म का था, कहते थे हम इन बुज़ुर्गों का कुर्ब हासिल करते हैं, तो कहा वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, जिसको भी अल्लाह के नाम के सिवा पुकारा जाए उसको भी ले लो। और बस कहते हैं कि देखो क्या फ़र्क पड़ता है, हम अगर रेगुलर स्टोर्स का ज़बीहा खा लेते हैं तो क्या हुआ, उन्होंने किसी बुत का नाम लेके थोड़ी काटा। जैसे जो भी
या आप कह लें नॉर्वेजियन स्टोर्स या अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन स्टोर्स का अगर मीट हम लेके खाते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने चले ठीक है अल्लाह का नाम नहीं लिया तो किसी बुत का तो नहीं लिया ना, तो आप देखिए कि ज़िबा की शरायत में ही शर्त हम देख चुके हैं कि अल्लाह का नाम भी लिया जाए। क्यों भाई हम क्यों लेते हैं अल्लाह का नाम? देखिए कि हम जो भी कुछ दुनिया में नेमते पाते हैं ना ये हमारा हक नहीं है, हम अल्लाह की इजाज़त से लेते हैं। जानवर किसकी मलकियत है? अल्लाह की। मिसाल है कि आपने यहाँ से ये पेन लेना है और ये पेन अगर बिलफर्ज मेरा है तो आपका अखलाकी फ़र्ज बनता है कि आप मुझसे आके पूछें कि क्या ये पेन मैं ले लूँ? मैं कहूँगी कि ज़रूर आप ज़रूर लीजिए इस्तेमाल करें। जानवर अल्लाह के हैं, ज़िबा के वक्त उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना असल में अल्लाह ताला से इजाज़त लेना है कि कैन आई टेक दिस एनिमल। तो जब हम अल्लाह के बजाय गैर का लें तो ये ऐसे ही है कि चीज़ उल्फत की है और आप इजाज़त मुझसे लेने लगें। तो बहरहाल ये बहुत सीधा मसला है लेकिन जो नहीं समझना चाहते वो नहीं समझते। फमन इस्तुर्रा, फिर जो कोई मजबूर हो जाए। इस्तुर्रा का लफ्ज़ जो है ये दाद रौरा से है, जर्रुन से, इसमें तोय ना डाल दीजिएगा ये एक्स्ट्रा है। ज़र्र का लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं भूख बीमारी तंगहाली, ख्वा माली हो इल्मी हो या सेहत की कमी हो, हर कमी के लिए ये लफ्ज़ आता है। किसी नाकाबले तकलीफ़ चीज़ की तरफ ले जाना, ये दो तरह की होती है, एक है अंदरूनी। अब ये इस्तरार कौन सा है? नंबर एक अंदरूनी, इतनी भूख है कि बस मौत की कैफियत आ गई, आंखों में अंधेरा छाने लगा, ब्लड प्रेशर लो होने लगा, शुगर नील हो गई, मिसाल है। और दूसरा इस्तरार होगा बैरूनी, किसी ने धमकी दी खाओ नहीं तो कत्ल कर देंगे, खाओ नहीं तो तुम्हें ये कर देंगे वो करेंगे। तो पिछली आयतों के साथ इसको लगा के देख लीजिए, टॉपिक एक ही चल रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा इस्तरार हो जाए तो फिर भी दो शरायत हैं, गैर बागिन, लज्जत का चाखने वाला ना हो, बागी ना हो, बगावत ना हो उसके अंदर, टेस्ट कॉन्शियस ना हो, और वला आद, हद से बढ़ने वाला भी ना हो। अदुब का लफ्ज़ होता है ना वही रूट है, इन दाल वाओ, और ज़रूरत से ज़ायद भी ना ले, उतने दो लुक्मे ले ले कि वहाँ पहुँच जाए जहाँ पर वो हलाल चीज़ खा सके। सूरत मायदा आयत 3, सूरत अनाम 145 और सूरत नहल की आयत 115 में अब हमारे सामने ये मसला आ रहा है। और हलाल और हराम के इब्तदाई तौर पर मक्का में अहकाम नाजिल हुए थे लेकिन फिर मदीना में आने के बाद उसको बज़ाब्ता एक शरीयत की तौर पे रखा गया। अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। क्या पता चला कि खाने पीने का ताल्लुक भी अल्लाह की रज़ा और नारज़गी के साथ है और ख़राब चीज़ों का खाना नेमतों की नशुक्री है। फिर आयत नंबर 116 में फरमाया वला तकूलु लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा, और ना बोलो झूठ जिनके बारे में तुम्हारी ज़ुबानें बयान करती हैं, ये कहते हुए कि हाजा हलालुं व हाजा हरामुन, कि ये हलाल है और ये हराम है। मक्का वालों की वो रस्मों पे अल्लाह ताला ने ये कमेंट दे दिया कि अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम को ना घड़ो कि ये जानवर बहीरा है, ये साहिबा है, ये हाम है, ये फलाँ है। सूरत अनाम 138, 139, 140 और सूरह यूनुस 59 में भी हम ये बात पढ़ चुके कि ऐसी बातें खुद ब खुद घड़ लेना कि ये हलाल है ये हराम है, असल में ख़ुद को दीन का मुख्तार समझ लेना, मत वसफ़ बयान करो। तसिफ़ु का लफ्ज़ ये वौसफ़ अदफ़ाज़ से है, वसफ़ बयान करना, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं कि औसाफ क्या हैं। अलसिनतकुम लिसान से है ये लफ्ज़, उसकी जमा है बुनियादी तौर पर, कि हलाल और हराम के खुद ना बनो। इससे पता चलता है जो लोग हर वक्त हराम हराम के फतवे बांटते रहते हैं वो भी ठीक नहीं। देखिए बाज़ लोग लफ्ज़ हराम को अपने ऊपर हलाल कर लेते हैं और हर जगह वो बोलते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। मुफ्ती नहीं बनना चाहिए, जो बात जितनी है उसको वहाँ रखिए और उसके बाद अगले के ऊपर छोड़ दें कि उसको भी अल्लाह ने अक़ल दी है वो खुद भी समझ जाएगा। काली तफ़तरू अल्लाहिल कज़िबा, इस तरह तुम इफ्तरा बांधोगे अल्लाह पर। फारा या इसका रूट होता है फरिया, कहते चमड़े को सीना, बाब इफ्तियाल में गया तो इफ्तरा बन गया, उर्दू में भी हम बोलते हैं बग़ैर दलील के किसी पर गलत बात कर देना। फरमाइनल्लज़ीन यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा, बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं तराशते हैं झूठ, ला युफ्लिहून, वो कभी फला नहीं पाएंगे। यानी आज के दौर में झूठ की क्या किस्में, खा लो कुछ नहीं होता, ये है वो है, मुश्किल है, हलाल गोश्त महंगा होता है, बड़ी दूर से लाना पड़ता है और सब एक ही है, और पाकिस्तानी स्टोर्स वाले भी तो पता नहीं कहाँ से लाके बेचते हैं। इस तरह की बातें ये सारी इफ्तरा की हैं, यानी चोर दरवाजों से हराम को हलाल करना। कहा कितने दिन फायदा उठाओगे, मताउन कलील, थोड़ा सा फायदा उठाने दो, खा लें, ऐश कर लें, अच्छा लगता है इनको टेस्ट, इनको फलां चेन फूड अच्छा लगता है क्योंकि उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, खाने दो। ये वो बर्गर देख के भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते, खाने दो, मताउन कलील, 4 दिन की बात है, जायका कितने दिन रहेगा, मुंह में टेस्ट कितनी देर रहा, ऐश कितने दिन रही, लज्जत कितने दिन रही, और उसका गुनाह अजाब कब तक रहा। वलहुम अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। अलीम का जो वजन होता है ना, जैसे अलीम रहीम, फाइल का वजन होता है जिसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, मुसलसल दवाम, यानी एक दफा नहीं अजाब होगा, ये चलता ही रहेगा हमेशा की, यानी 4 दिन का मजा उठाना था और उसका गुनाह, उसका अजाब, उसकी तकलीफ हमेशा की है। क्या फायदा हुआ, आज से 1 हफ्ता पहले अगर हमने कोई बर्गर खाया था तो क्या आज उसका टेस्ट मुंह में है? नहीं है। इसी तरह कल क़यामत के मैदान में खड़े हुए हमें दुनिया के टेस्ट इतने छोटे लगेंगे कि हम उसकी वजह से अपने आप को गुनाहगार महसूस करते हुए दुख करेंगे कि हमने ऐसा काम क्यों किया था। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि आज मुसलमानों तुम पे ये शरीयत हराम नहीं, क्योंकि जूँ ही हलाल हराम और खाने पीने की बातें आती हैं तो बाज़ दफ़ा बच्चे भी ऑफेंड होते हैं, कहते हैं हाय हम क्यों मुसलमान घर में आ गए, देखो हमारे दूसरे फ्रेंड्स तो ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं। कहा नहीं, तुम्हारी शरीयत कोई बोझल नहीं है। वा अलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन कब्ल, और यहूद पर हमने हराम कर दी वो चीज़ें जिनका जिक्र किया था हमने आप पर पहले से। कहाँ किया था अल्लाह ताला ने जिक्र आप पर, हम पर? सूरत अनाम की आयत 146 में अल्लाह ताला ने बता दिया, और सूरत निसा की आयत 160 में भी बता दिया था कि वल्लज़ीना हादू हर्रमना, जिसमें पढ़ा था ना कुल्लज़ी ज़ुफ़र, नाहनों वाले जानवर भी हराम थे। अल्लाह ताला कहते हैं यहूद पर हमने कुछ चीज़ें हराम की थी जिसका तस्करा हम पीछे आपके ऊपर कर चुके, आपको ये कहानी सुना चुके। वमा ज़लम ना हम, और हमने इन पर कोई जुल्म न किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते थे। क्या था उनका जुल्म? कि अल्लाह के बताए हुए हलाल को हराम कर देते और हराम को हलाल कर देते। इससे क्या पता चलता है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को कोई हुक्म देता है तो लोग उसके अंदर कमी बेशियां करके खुद अपने ऊपर ही जुल्म करते हैं। अल्लाह की ज़ात कभी भी जुल्म नहीं करती, और हम पीछे पढ़ चुके हैं सूरत अनाम ही में ना, कुल ला अजीदु फी मऊकिया इलैया मुहर्रमन से आखिर तक, कि कह दीजिए कि मैं नहीं पाता उस चीज़ में जो वही किया गया मुझ पर कि हराम किया गया हो इन जानवरों के सिवा कोई और चीज़। बिल्कुल पिछली चीज़ों का दोहराना था, लेकिन अब पिछली ज़िंदगी में कर चुके, खा चुके, पी चुके, अब क्या करें? इसका तज़किरा आयत 119 में है, ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك, फिर बेशक आपका रब उनके लिए जिन्होंने गलती की लेकिन नादानी से, फिर तौबा कर ली उन्होंने इसके बाद, और दूसरी शर्त वसलहू, और अपनी इसलाह कर ली, खुद को संवार लिया। इन ربك من بعدها لغفور رحيم, बेशक आपका परवरदिगार इनके गुनाहों को बख्शने वाला है और वो नहायत रहम वाला है। कोशिश करो, अगर गुनाह हो चुका अब आ जाओ, तौबा कर लो, तौबा के आंसुओं से अपने उस गुनाह को ख़त्म कर दो। आप देखिए कि इंसान के ऊपर एक पर्दा आ जाता है, ख्वाहिशात का, गलबे का, गुस्सा आता है इंसान को, उसका आता है, फिर उस गफलत के अंदर इंसान कई गलत काम कर लेता है ना। मसलन यहाँ जहालत की बात है ना, भी जहालत है, तो जहालत 2 तरह की होती है। एक है कि पता ही नहीं था ये गुनाह, सिरे से पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं है। कई लोग आज भी ऐसे होंगे, कभी कुरान सुन्नत के करीब नहीं गए, हलाल हराम की बात नहीं पता थी। दूसरी जहालत होती है वक्ती जहालत, वो कौन सी है? मालूम था मगर उसकी शिद्दत नहीं पता थी, बस गुस्से में आके वो काम कर लिया, जज्बात में कर लिया। आज के दौर में उम्मते मुस्लिमा में से अक्सरियत ये दूसरी किस्म की जाहिल है, सबको पता है क्या हराम है क्या गलत है, लेकिन ख्वाहिशात बंदे को रोकती नहीं, वो बस रुक नहीं पाता ना, जैसे हैंड ब्रेक ख़त्म हो गया गाड़ी का और गाड़ी फिसलती जा रही है, पता है यहाँ रुकना है, कोशिश भी करते हैं ब्रेक लगाने की लेकिन ब्रेक्स काम नहीं करते। तो कसम मत आबू, तौबा क्या है? एतराफ़। ہاں میں نے کی تھی یہ غلطی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو۔ سب سے پہلے بندہ اعتراف کرتا ہے، پھر ندامت، پھر توبہ ہوتی ہے۔ توبہ اصل میں کیا ہے؟ خود کو خود سزا دینا، اپنی انا کا بت توڑنا۔ نفس پہ بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا، بندہ اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو توبہ کرے گا۔ من بعدی ہاں، ہاں کی ضمیر جو ہے نا، یہ توبہ کی طرف ہے، اسی لیے مؤنث ہے۔ پھر غفور ہے۔ ہم کہتے ہیں بغیر توبہ کی اللہ معاف کر دے گا، مثلا کوئی جوانی میں یہ غلط کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، کوئی شرم ساری نہیں، کچھ نہیں، نہ توبہ ہے، تو کیا خیال ہے وہ ماضی کے معاف ہو گئے؟ نہیں، توبہ کے بعد گناہ چھوڑیں گے پھر معافی ملے گی۔ اور بعض تو کیا کہتے ہیں، لو میں اکیلا کر رہا ہوں، سارے کر رہے ہیں، جہاں سارے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا۔ ہاں، تو آپ دیکھیں کہ یہ پھر توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بندے کو تڑپ لگ جائے کہ میرا اللہ مجھے اس حال میں دنیا سے نہ لے جائے، اور میں غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کے نہ چلا جاؤں۔ واصلحوا، پھر اصلاح کرے۔ کوئی اگر ٹیمپٹیشن تھی گناہ کی طرف، تو اس کو اپنے آپ سے دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ لغفور الرحیم، پھر وہ معاف کرے گا۔ اور توبہ ہماری شریعت کی سب سے اسٹرانگ چیز ہے، حتیٰ کہ شرک تک کو بھی معاف کرا دیتی ہے، شرط یہ کہ بندہ زندگی زندگی میں اپنے گناہوں پہ توبہ کر لے۔ اور اس کے بعد پھر ایک رول ماڈل پیش کیا جا رہا ہے، کہ کہیں تم یہ نہ کہنا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا جو سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ دل ہی نہیں چاہا بیچ میں رکنے کو۔ ابراہیم کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ محبت ٹپکتی ہے لفظوں سے، پھول جھڑنے والا انداز لگتا ہے۔ اللہ اتنے پیار سے ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک کامل مرد تھے، مکمل انسان تھے، دیکھنے میں انسان تھے، کام ایک پوری امت کا کر گئے۔ امت کا لفظ عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے، جو پیچھے بھی بتایا، یہاں امام کے معنوں میں، مدت کے معنوں میں ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا تھا۔ سورت بقرہ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات حضرت ابراہیم کے لیے کہی تھی، کہ انی جائلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تو وہی لفظ امام یہاں امت بن گیا۔ دیکھنے میں امت ہوتی ہے قوم، لیکن یہ تیسرا معنی ہے، چار مختلف معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ ابراہیم ایک امت کیسے تھے کہ ان میں اتنی خوبیاں، اتنی بھلائیاں تھیں جو ایک بڑی امت میں بھی نہیں ہوتی، نمبر ایک۔ دوسری بات کہ ایک ابراہیم اتنے بڑے بڑے کام کر گئے جتنے کوئی ایک پوری امت بھی نہیں کر پاتی۔ تیسری بات، ایک ابراہیم پر اتنی آزمائشیں آئیں جتنی شاید ایک پوری امت پر بھی نہیں آتی۔ ایک ابراہیم کا ایمان، اللہ سے محبت اتنی بڑی تھی کہ جتنی پوری جماعت، پورے گروہ کے لوگوں کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور وجہ ان کو امت کہنے کی، کہ ایک ابراہیم علیہ السلام وہ تبدیلی پیدا کر گئے اپنے معاشرے میں جو ایک بڑی امت بھی نہیں کرتی۔ اتنے بڑے تھے ابراہیم، کتنا رشک آتا ہے، تمام خوبیوں سے مرصع تھے۔ اور عربی زبان میں امت جب ایک انسان کے لیے آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ساری خوبیوں کا مجموعہ ہو، ہر طرح کی خوبی، کسی اینگل میں بھی آپ دیکھ لو، ابراہیم کو چھان پھٹک کے دیکھ لو، آپ کو ہر لحاظ سے واقعی وہ خوبصورت دکھیں گے۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا کر دے۔ امام اور پیشوا تھے، حق اور صداقت کے علم بردار تھے، جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہو گئے حق کا۔ چاروں طرف فتنوں کی آندھیاں تھیں، چاروں طرف شرک کے اندھیرے تھے، اور حضرت ابراہیم اکیلے ہی کھڑے ہو گئے، اکیلے ہی اللہ تعالیٰ سے وفائیں کرنے والے تھے۔ سورت نجم میں بھی آتا ہے، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا احساس دیا، الذی وفا۔ ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا، صاحب رشد تھے، اللہ نے ان کو سمجھ دی۔ سورت الانعام میں ہم پڑھ چکے ان کا قصہ، کیسے ستاروں کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر
अल्लाह को पा लिया, दुनिया से अलग थलग थे। इसी तरह जो शख्स दुनिया भर से अलग थलग हो, और उस कौम को भी उम्मत कहते हैं जिसकी तरफ कोई रसूल भेजा गया हो। अब सारे लफ्ज़ जमा कर लें तो आप कह सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम बेहतरीन इंसान थे अपने वक्त के। और कौन सी चीज़ एक बंदे को बेहतरीन बनाती है? दिल तो सबका ही चाहता है, यकीनन आपका भी चाह रहा होगा और मेरा भी चाह रहा है, लेकिन क्या बातें थी कि जिसने इब्राहीम को इमाम बना दिया, इब्राहीम को लीडर बना दिया। काउंट करते जाइए सिर्फ इन आयतों में, अगर आप देखें तो पहली तो बात उम्मत की आ गई, ऑलराउंडर थे, हर फन मौला थे। दूसरी बात कानितन, कनूत था। कनूत के अंदर दो चीज़ें आती हैं, दवाम और आजजी। दवाम क्या होता है? हर वक्त एक ही हाल में रहना, ये नहीं कि कोई मुश्किल पड़ी तो मसल्ला निकाल लिया, इम्तिहान आने लगे तो नफिल शुरू कर दिए और फिर आगे जो हुआ सबको पता है। रमज़ान के मुसलमान नहीं थे, ईद वाले दिन के भी मुसलमान थे, मस्जिद के इमाम ही नहीं थे, वो तिजारत के इमाम भी थे, हर जगह अल्लाह के दीन को लेके चलते थे, ठीक है। और कानितीन में दूसरी चीज़ आजजी, के फिर अपनी खूबियाँ नहीं बयान करते थे, बड़के नहीं मारते थे, बड़े बड़े नहीं बनते थे। दूसरी खूबी क्या है? कानित किसके लिए थे? लिल्लाह। आज हम भी कानित होते हैं लेकिन ले दुनिया। आज हम भी भाग दौड़ करते हैं दवाम के साथ, सुबह रात दिन एक हमने भी किया हुआ है, लेकिन वो कनूत हमारा दुनिया के लिए, ले नफ्स। और आज हम भी आज इस उम्र में, आज हमने भी अपनी गर्दनें झुकाई हुई हैं लेकिन अल्लाह की बजाय दुनिया के लिए, ख्वाहिशों के आगे, जबकि वो अल्लाह के लिए थे। अगली खूबी हनीफन, फोकस थे। सबसे कटकर एक का बनने वाला शख्स हनीफ होता है। मस्जिद में जाकर और घर में जाके दो मुख्तलिफ अंदाज नहीं थे उनके जिंदगी गुजारने के। सारी दुनिया एक तरफ थी और अल्लाह का बंदा दूसरी तरफ था। सब शिर्क पे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तौहीद पे थे, हनीफ थे। और सबसे मुश्किल काम ही ये है आज दुनिया में। हम कहते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारे दिल की और ही कैफियत होती है, जब दुनिया में जाते हैं तो कुछ और ही बन जाती है। इब्राहीम में ये डिफरेंस नहीं था, उनकी जो कैफियत मस्जिद में जाके होती होगी ना, वही उनकी कैफियत अपने बच्चे की शादी के मौके पे भी होती थी। जब मान जो लिया, फोकस हो गया बंदा, जिसको पता चलता है ना मेरे इसमें फ़ायदा है, वो इधर उधर नहीं फिर देखता। जैसे आज कुछ लोग फोकस्ड हैं माल कमाने के लिए, कुछ फोकस्ड हैं घर सजाने के लिए, कुछ फोकस्ड हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ फोकस्ड हैं अपने आप को सजाने संवारने के लिए, लेकिन खुशकिस्मत है वो बंदा जो अल्लाह के लिए हनीफ हो जाए। फिर अगली खूबी वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, वो बिल्कुल मुशरिकों में से ना थे, थोड़ा सा भी शिर्क नहीं था। या मक्का वालों को मुँह की खानी पड़ी, बड़ा मान करते थे कि हम इब्राहिम की औलाद से हैं, कहा तुम आराम से बैठो, तुम्हारी ज़िंदगी और इब्राहीम की तालीमात में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, कुछ भी उनका और तुम्हारा आपस में नहीं मिलता सिवाय तुम्हारे दावों के और तुम्हारी इन बातों के, कि तुम इस तरह से बातें करते हो और उस तरह की बातें करते हो, वो बिल्कुल मुशरिकों से अलग थे। अगली खूबी शाकिरल्लियन उमीही, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाला। शाकिर का लफ्ज़ तो आसान है, शुक्र से, शुक्र करने वाला। अब देखिए शाकिर फ़ाइल, शुक्र के लफ्ज़ के बीच में अलिफ आ गया तो शाकिर हो गया। चले इसको ज़रा मफूल पे लेके आए तो क्या बनेगा? मशकूर, शाकिर फ़ाइल, मशकूर मफूल, ठीक है। तो वो लफ्ज़ बढ़ाते जाएंगे, मानी बदलते जाएंगे। अनउमी का जो लफ्ज़ है ना, ये नेम की जमा है, नेमत की जमा भी आप कह सकते हैं, यानी नेमतों की शुक्र गुजारी करने वाले थे, बहुत कुछ शुक्र गुजार थे वो अल्लाह के, अल्लाह की नेमतों को खुशी से लेते थे, फिर उसका हक भी अदा करते थे। इज्तबाहु, चुन लिया इसको अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह किसी को चुन ले कितनी बड़ी बात है। किस लिए चुना था? विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा किया? नहीं, अपना घर बनाने के लिए चुना, मक्का को आबाद करने के लिए चुना, हज और उम्रे के मनासिक सिखाने के लिए चुना, बेटे की कुर्बानी देने के लिए चुना, अपने घर को بے آباد کر کے اللہ کا گھر آباد کرنے کے لیے چنا، اپنے پیغام کے لیے چنا۔ حضرت ابراہیم نے بہت ساری ہجرتیں کی، جگہ جگہ جاتے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے، اس کے بعد آگے چلے جاتے۔ اللہ نے ان کو چنا، اور حقیقت یہ کہ اللہ جس کو چنتا ہے اسی سے اپنا کام کراتا ہے، اور چناؤ کے لیے یہ پچھلی چیزیں لازم ہیں۔ چناؤ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ وہ ساری ہیں جو پیچھے تذکرہ ہو گیا، اور جس کو اللہ چن لے پھر وہ ہدا ہو، پھر اس کو راستے بھی دے دیتا ہے، پھر اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کدھر راستہ دکھایا؟ الٰ صراط مستقیم۔ سارے لوگ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے ابراہیم کو بن مانگے ہی دے دیا، کیا ہے ہم آپ کو راستہ دکھاتے ہیں سیدھا۔ اور اس کے ساتھ کیا پھر بس دین ہی دین تھا، آخرت ہی نہیں؟ واتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہم نے حسنہ دیا۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ابراہیم بن گئے تو بیٹوں کی تو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور بیویوں کو تو جنگلوں میں چھوڑ کے آنا ہی پڑے گا، اور گھروں کو تو خالی رکھنا ہی پڑے گا۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ بس تھوڑی ہی دیر کی قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندے کی خوشی بن جاتی ہے وہ نعمت کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام کرایا، مجھے توفیق دی کہ میں اپنا گھر چھوڑوں اور میں اپنے بچوں کو چھوڑوں اور اللہ کا کام کروں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آزماتا ہے، اس کو کیا کرنے لے کے کسی سے کچھ، وہ تو خود دینے والا ہے۔ جو بندہ اللہ کی دعوت پہ لبئی کہہ لیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے دنیا کی خیر ڈالتا ہے۔ کیا کیا حسنہ ملی ابراہیم کو؟ پہلی بات ہے کہ دنیا میں جتنے اس وقت الہامی مذاہب ہیں، ڈیوائن ریلیجنس، سب ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ تین بیٹوں کو نبوت کے لیے چنا اللہ تعالیٰ نے ان کے۔ ابراہیم کے پہلا بیٹا اسماعیل، اس سے آ گیا دین محمدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم۔ حضرت اسماعیل کے بعد اسحاق، ان سے چنے گئے بنی اسرائیل، جتنے انبیاء کرام آئے اکثر ان میں سے گزرے۔ اور تیسرا بیٹا تھا مدیان، مدین قوم شعیب، اس کی ان کی طرف سے چنی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیسے حسنہ دی؟ جو آگ ان کے لیے جلائے گی اس کو ٹھنڈا کر دیا، جلتے رہو تم خود ہی دکھ میں کہ یہ تو جلا ہی نہیں۔ جلانے والے حسد کی آگ میں جل گئے ہوں گے، ابراہیم کا اس آگ نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے چنا؟ کہ ان کے اوپر رہتی دنیا تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے درود پڑھوایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ چھوٹی بات ہے، چلیں جیسے بھی ہیں، لیکن آج دنیا میں کئی ملین بلین میں رہ لے مسلمان ہیں، ان میں سے چلیں کوئی ایک بلین تو نماز پڑھتے ہی ہوں گے نا، اور ہر بندہ دن میں صرف فرضوں کو دیکھ لیں تو آخری رکعت میں یہ دعا پڑھتا ہے۔ امیجن کریں ذرا ابراہیم کا ثواب کیسے ملٹی پلائی ہوا۔ کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کام کر جائیں کہ ان کے بعد رہتی دنیا تک ان کی تعریفیں ہوتی رہیں، ان کی وجہ سے انسانیت کو فائدے ملتے جائیں۔ اللہ نے ابراہیم کو چنا، اپنے راستے پہ دیا، پھر ان کو حسنہ دی، اور کیا صرف دنیا کے اندر دے کے سب کو چھوڑ دیا؟ کانی وانہ فی الاخرت لمن الصالحین، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ کیا بات ہے، آخرت میں جا کے کیا نیکیاں کریں گے؟ نہیں، نیک تو اب دنیا میں بننا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے آج کے دور میں، ہم آخرت میں جا کے نیک ہوں گے، جنت میں نمازیں پڑھیں گے، ابھی فارغ نہیں ہے، قبر میں بہت ٹائم ہوگا، وہاں جا کے قرآن پڑھیں گے۔ نہیں، لمن الصالحین کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کا ساتھ ملے گا، جو صالحین کو ملے گا وہ ابراہیم کو بھی ملے گا، اچھے لوگوں میں ان کو اللہ اٹھائیں گے۔ اور یہاں صالحین سے مراد انبیاء کرام ہے، کیونکہ صالحین ویسے تو عام لوگوں میں، امتیوں میں ایک درجہ ہوتا ہے نا، لیکن نبوت اور رسالت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے اوپر کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اچھی صحبت ہوگی، جو خود اچھا ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ پھر ان کے لیے باقی راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کس کی طرف؟ محمد رسول اللہ کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر صورت کے اینڈ پہ براہ راست خطاب اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، یہ بالکل نیچرل ہے۔ کسی کو آپ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا، پورا وقت وہ آپ کی کہانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، پھر ایسے ہوا ایسے ہوا، اور جب آپ کلوزنگ کرتے ہیں نا، اینڈنگ،
तो फौरन आप कहते हैं अच्छा फिर आपने सीखा, अच्छा आपको मज़ा आया, आपको पसंद आई, बिल्कुल यही स्टाइल है और यही कुरान का हुसन है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता कि फिर हमने आपकी तरह वही की क्या ने तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा, क्या बाप भी पैरवी करे मिल्लत इब्राहिम की। ये सुम्मा किसके साथ है, क्योंकि सुम्मा फिर होता है ना देन, तो देन से मुराद क्या है यहाँ कि इतना कुछ इब्राहिम को दिया, ये भी नेमतें थी उनको मिली, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो इब्राहिम को मिली वो क्या कि मैंने अपने आखिरी नबी, मैंने अपने हबीब को उस नबी के तरीकों पे चलने की दावत दी। ज़रा सोचिए कैसा रिवॉर्ड है। लेकिन जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको कहा जाए कि अच्छा फ़ायदा उठाना चाहें तो आप अब्दुल्ला बिन बास के फतावा को रजू कर लें या उसैमिन के खुतबात जो उनको पढ़ना शुरू करें, यानी आपको किसी आला किसी बड़े आलम दीन के साथ जोड़ दिया जाए कि जाएं आप जो भी उनकी चीज़ है ना वो आप भी देखनी शुरू करें, तो एक ऑनर होगी ना। अल्लाह के नबी के ज़रिए से इब्राहिम को ऑनर दी गई कि सबसे बड़ी नेमत कल क़यामत के दिन इब्राहिम के लिए जो बनेगी वो होगी आग में से निकल आना, लेकिन ये बहुत बड़ी उनकी शान होगी कि अल्लाह का नबी उनके साथ है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम फरमाया करते थे कि मैं हज़रत इब्राहिम के दीन पे हूँ, मैं इब्राहिम के मिल्लत उनके तौर तरीके पे। और वो कौन थे, वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक थोड़ी थे। तुमने अपनी ज़िंदगी में मक्का वालों शिर्क बना लिया, वो इब्राहिम को मुशरिक थोड़ी थे। असल में अब वही अंदाज़ है मक्की सूरतों वाला कि बड़ी नस्बतें रख के खुश होते हो, उंगली कटा के शहीदों में नाम लेना चाहते हो, करना कराना नहीं लेकिन रिवॉर्ड तुम लेते हो। कहते थे कि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम उनके बनाए हुए घर की हिफाजत कर रहे हैं। कहा कैसे कर रहे हो, तुमने इब्राहिम के दीन की हिफाजत नहीं की, तुम उस घर की जितनी मर्जी कर लो फ़ायदा नहीं होगा। असल तो ये नबी है जो इब्राहिम के तरीकों पे है। सैयदुल अंबिया को आपकी तबाह का हुक्म दिया गया, ये होती हैं खूबियाँ किसी के अंदर इखलास की। जब तक बंदा के दिल में अकीदा तौहीद पुख्ता नहीं होता, उसके अखलाक के अंदर चाशनी नहीं होती, उसकी ज़िंदगी कुर्बानियों के रंग में रंगी हुई नहीं होती, ये एजाज़ नहीं मिलते। आज हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को भी अगर इस नहज पे ला के देखा जाए तो नबी सल्लम से नस्बत जोड़ने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उनके तरीक़ेकार पे चलने वाले बहुत थोड़े हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों की यहाँ मिसालें बयान करते हैं कि गौर करो, सोचो, देखो किन की नस्ल से हो, किन की औलाद से हो, अल्लाह ने उनको क्या दिया और तुम्हें क्या करने का हुक्म दिया। इब्राहिम तौहीद के दलाइल देते थे, अक्ली दलाइल देते थे, नमरूद को उन्होंने तबलीग की, अपनी कौम को की, अपने बाप को की, तो मक्का वालों आज तुम्हें क्या हो गया। और पीछे ये बात हम पढ़ चुके हैं कई जगह, सूरह मायदा 47, सूरह अनाम आयत 161, दोनों में आता है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए एक रास्ता रखा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप पैरवी करें दीनन क़य्यम मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हम सबको पक्का कर रहा है कि देखो अपनी ज़िंदगी से शराकत निकाल दो, ये शराकत निकलेगी तो तुम्हें बात समझ आएगी, वरना तुम क्या जानो कि इब्राहिम की ज़िंदगी में जो खुशी थी वो किसी और में कैसे होगी। और ये वो चीज़ है कि जो वाकई बंदे को फिर कुर्बानियाँ करने पर तैयार करती है, मायल करती है। दुआ करें कि हमारे अंदर इब्राहिम की हू पैदा हो जाए, थोड़ा सा असर उनका रमक आ जाए। आज जितने मुसलमान दुनिया में हैं ये नक्शा बिल्कुल बदल सकता है, सब्ज़ रंग के झंडे कई मुल्कों में लग सकते हैं अगर मुसलमान हनीफ हो जाएं, फोकस्ड हो जाएं, अल्लाह की नेमतों के शुक्र गुजार हो जाएं। और एक एक बंदा अपनी जगह हीरे की कान बन सकता है अगर वो अपनी कीमत महसूस करे, और जब बंदा ये करेगा तभी वो अपने आप को पाएगा। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं, और इस वक्त तिलावत सुनने का जो अंदाज़ होगा वो क्या है कि हम अपने आप को इब्राहिम की जगह पे रखें। आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हज़रत इब्राहिम के हालात ज़िंदगी में कि इन्होंने कौम के बुत तोड़े थे और इनके दौर का शिर्क जो था वो बुत परस्ती का था। आपने सुनते का सोचना क्या है कि जब आज हम रसूमात तोड़ने की बात करते हैं तो उतना ही शोर उठता है। देखिए शिर्क शक्लें बदलता है ना, आज का शिर्क जो है वो गिरोह परस्ती का शिर्क है, रसूमात का शिर्क है। तो कल बुत टूटने पर रिएक्शन हुआ तो इब्राहिम जम गए, आज हम रस्में छोड़ते हैं तो लोग उसके ऊपर हमारे खिलाफ होने लगते हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो करते हुए हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल बनाना है इंशाअल्लाह ताला।
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.